पृष्ठ संख्या 57। राकेश की सारी कुशलता पात्रों को आमने सामने रखने में कालिदास और दंतुल, मल्लिका और अंबिका, मातुल और निक्षेप, अंबिका, कालिदास और विलोम, कालिदास और मल्लिका, इन पात्रों के परस्पर संवाद ही नाटकीय प्रभाव पैदा करने में पर्याप्त कारण है। अन्य बाह्य तत्वों की आवश्यकता ही पैदा नहीं होती। इस प्रकार दूसरे अंक में नए पात्र रंगिणी, संगिणी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियंगु, मंजरी आकर नाटक को सजीव बनाते हैं। बातचीत, व्यवहार, गति, हाव भाव सबके द्वारा बड़ी आसानी से नागरिक सभ्यता की कृत्रिमत्ता और ग्रामीण सादगी, स्वाभाविकता का आपसी विरोध दिखाया गया है। दूसरी ओर मल्लिका और प्रियंगु को आमने सामने लाकर दो नारी व्यक्तियों का अंतर, संघर्ष, द्वंद्व दिखाकर नाटकीयता पैदा की गई है। प्रियंगु के जाने के बाद मल्लिका और अंबिका का उत्तेजनापूर्ण संवाद भी नाटकीय संघर्ष की सृष्टि करता है। अनुस्वार अनुनासिक के संवादों और गतियों, क्रियाओं, भाव, मुद्राओं में भी वैविध्य और गत्यात्मकता है, जो उस ग्रामीण घर और वातावरण में एकदम विरोधी बनावटी लगता है। ये विरोधात्मक स्थितियां पात्रों, भाव, स्थितियों की विविधता ही आंतरिक शिल्प का प्रमाण है। राकेश की इस खोज का परिणाम है कि रंगमंच को बाह्य उपकरणों पर आश्रित न होना पड़े। पात्रों की संक्षिप्त उपस्थिति भी नाटक में जान डालती है। लगता है कि पहली बार हिंदी नाटककार के सामने नाटक की, रंगमंच की समूची परिकल्पना थी, जिसने दर्शकों की रुचि, मनोरंजन, समसामयिकता, सार्थक व्यंग सबको एक साथ पकड़ा है। इसीलिए राकेश के नाटकों में आकर्षण तत्व भी है, हास्य व्यंग भी, लेकिन ऊपर नहीं और न नाटक की आत्मा से अलग, वरन उसी में गुथा हुआ। यद्यपि तीसरे अंक में उतनी गतिशीलता और तीव्रता नहीं रह पाई है, एक मल्लिका के लंबे स्वगत भाषण के कारण, दूसरे अंक में कालिदास के लंबे भाषण के कारण, इस अंक में कालिदास का प्रवेश बड़ा ही नाटकीय और प्रभावोत्पादक है, लेकिन बहुत देर तक उसका निरंतर बोलते जाना, अपने को स्पष्ट करते जाना और मल्लिका का निष्क्रिय बैठे रहना पूरे नाटक में निहित तीव्रता को कम करता है। यह इसीलिए भी खटकता है कि वह नाटक का चरम बिंदु है, जहां तीव्रता में बाधा नहीं आनी चाहिए। इस अंक का दूसरा प्रभावशाली स्थल है विलोम का द्वार खटखटाना और प्रवेश। तब से अंत तक नाटक जिस दुर्दम्य गति से चलता चला जाता है और चरम परिणति तक पहुंच जाता है, वह अप्रतिम है। बहुतों को यह राकेश की अति नाटकीयता और फिल्मी शैली लगती है। वस्तुतः यह दोष केवल कालिदास के चरित्र चित्रण की कमजोरी के कारण लगता है, अन्यथा नाटक में तीव्रता, सघनता और रंगमंचीय द्वंद्व का वह श्रेष्ठ उदाहरण है। आषाढ़ का एक दिन के संवाद नाटकीय संवादों के संबंध में प्रचलित अवधारणा के आधार पर नहीं देखे जा सकते हैं। संवाद अभिनयात्मक हैं, संक्षिप्त हैं, चुस्त हैं या प्रवाहशील हैं, बल्कि इन संवादों की सुंदरता उनके उस रचाओं में है जहाँ नाटककार की आत्मीयता और पात्रों की आत्मीयता एक साथ दिखाई देती है। यह ध्यान देने की बात है कि आद्यंत इस नाटक के संवाद पात्रों के व्यक्तित्व के भिन्न स्तरों से अभिन्न रूप में जुड़े हैं। इसलिए कहीं तेजी है, कहीं ठहराव, कहीं भावुकता है, कहीं कठोरता है, कहीं द्वंद्व है, तो कहीं यथार्थ का स्वर। पृष्ठ संख्या 58। मल्लिका के संवादों में निरंतर समान गति, काव्यात्मकता का पुट और भावुकता भरी शब्दावली मिलेगी, तो अंबिका के संवादों में एक स्थिर सधा हुआ तीव्र स्वर और मातृ हृदय की पीड़ा से उत्पन्न कंपन कठोरता, वितृष्णा, व्यथा, चिंता, जड़ता का मिश्रित रूप। रंगिणी संगिणी के संवाद उनका स्वभाव सुलभ चांचल्य और कलाकार के हाव भाव लिए हैं, तो प्रियंगु के संवादों में आभिजात्य वर्ग के संस्कारों की शालीनता के साथ साथ एक सी लय कम उतार चढ़ाव है, जैसा कि उसकी गतियों और एक्शन में भी। उसके संवादों में शारीरिक क्रियाओं की गुंजाइश कम है, गतियां और भाव प्रदर्शन के अवसर ज्यादा हैं। कालिदास की कोमलता, संवेदनशीलता, द्वंद उसके संवादों से पूरी तरह अभिव्यक्त होती है। हरण शावक को दुलारते हुए उसका बोलना छोटे छोटे प्रश्नात्मक वाक्यों में है, जो उसके अनुकूल एक्शन और भाव प्रदर्शन की पूरी छूट देता है, लेकिन अंतिम अंक में उसके संवाद इतने लंबे होने पर भी बड़े अभिनयात्मक हैं। शिथिलता, पुनरावृत्ति, अनाटकीयता, स्थिरता, जड़ता का कहीं नाम भी नहीं है। दूसरी ओर विलोम जब भी बोलता है तो उसके संवादों में एक खास तरह का लहजा है। समयानुकूल रंग बदलने वाली व्यावहारिक दृष्टि के अनुकूल परिवर्तन और उतार चढ़ाव है। रुकना, झटका, तेजी से बोल जाना, ये सब उसे स्पष्ट करते हैं। प्रथम अंक में वह अपने अनधिकार प्रवेश की योजना और कोशिश के अनुरूप बात करता है, तो अंतिम अंक में आंतरिक रूप से पराजित होने पर भी वह अपने साधिकार प्रवेश के टोन में बातचीत करता है। उसकी पराजय और विजय का मिश्रित रूप उसके अट्टहास और लड़खड़ाहट, एक्शन और संवादों की लय से एक साथ उभरता है। जितने लय परिवर्तन, भाव परिवर्तन, टोन का बदलना, अभिनय शैली की विविधता और कठिनता विलोम के संवादों में है, उतनी अन्य पात्रों के संवादों में नहीं। यह सत्य उसके व्यक्तित्व का, आज की व्यावहारिकता का है, जिसे संवादों में मूर्त कर दिया गया है। कालिदास और विलोम के संवादों में दो व्यक्तियों, दो दृष्टियों का अंतर साफ दिखाई देता है, साथ ही दोनों का एक दूसरे से संबंध भी। अक्सर ऐसा लगता है जो कालिदास स्पष्ट नहीं कह पा रहा है, उसे विलोम कह रहा हो। मातुल के संवाद प्रथम अंक में मल्लिका और अंबिका के धीमी गति के संवादों के बीच में एकदम भिन्न वातावरण की सृष्टि करते हैं। तेज आवाज, तेज गति, झल्लाहट, शारीरिक क्रियाओं की संभावना ज्यादा, हाव भाव की कम, क्योंकि उस जैसा चाटुकार और अवसरवादी व्यक्ति भावना और द्वंद्व से बहुत दूर है। प्रत्यक्ष और भौतिक सत्य में विश्वास करने वाला हाथ पैर ज्यादा चलाएगा। एक अलग दृष्टिकोण अपनी पूरी सजीवता और क्रियात्मकता के साथ संवादों की उपयुक्त रचना के कारण मंच पर अलग उभरता है। राकेश के संवादों का सौंदर्य और वैशिष्ट्य तब तब बहुत प्रभावित करता है जब विरोधी मनः स्थितियों वाले पात्र परस्पर टकराते हैं। खास तौर से कालिदास विलोम और कालिदास दंतुल, राकेश की संवाद रचना में कुछ चीजें और ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे संवाद से संवाद, शब्द को पकड़कर निकलते जाना, अपनी पूरी अर्थ गरिमा और अभिनयात्मकता में। पृष्ठ संख्या 59। जहाँ तेजी और तीखापन लाना है, परस्पर विरोध दिखाना है, वहाँ यह युक्ति ज्यादा काम में लाई गई है। कहना न होगा कि संवादों की यह स्वाभाविकता और वैशिष्ट्य न अनायास आया है न सायास। यह पात्रों के अंतर्मन तक उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की आंतरिकता तथा राकेश की पहुंच का स्वाभाविक परिणाम है। यह भाषा शक्ति की पहचान और शब्दों की आंतरिकता की खोज है, और यह नाटक की मौलिकता और आत्मा में प्रवेश और रंगमंच के यथार्थ की पकड़ का सफल परिणाम है। बिना अंतर्दृष्टि के ऐसे लगाव के साथ संरचना संभव नहीं हो सकती है। अब तक हिंदी नाटकों में संवाद पात्रों के व्यक्तित्व का परिचय मात्र ही अधिक कराते थे या कथानक का विकास करते थे। राकेश के संवाद पात्रों के व्यक्तित्व से गहरी आत्मीयता स्थापित करते हैं, उसके आंतरिक सूत्रों की पकड़ से विविधता पैदा करते हैं, और साथ ही यह संभावना भी कि ऊपरी अभिनय शैली या वेशभूषा से ही पात्रों को एक दूसरे से पृथक न करना पड़े। उनके संवाद ही उनकी विशेषता और पारस्परिक अंतर को पूरी गहराई से अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या कारण है कि अनुस्वार अनुनासिक के संवाद सबसे अलग, छोटे बहुत छोटे, एक सी शब्दावली पुनरावृत्ति लिए हुए हैं? यह सब कारण है। नया नाटककार आज की मनोवृत्ति को भाषा और संवाद रचना से स्पष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। पुनरावृत्ति यहाँ सार्थक कही जाएगी, क्योंकि ये दोनों राजकर्मचारी उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो बार बार कहता बहुत है, करता कुछ नहीं। उस वर्ग की निष्क्रियता और जड़ता को बखूबी इनके संवादों में भर दिया गया है। सांकेतिकता इनका बहुत बड़ा लक्षण है। यह अर्थ, शक्ति, ध्वनि और क्रिया का सामंजस्य हिंदी नाटक की उपलब्धि है। इसमें अभिनय और निर्देशन क्षेत्र की बहुत सी संभावनाएं भी हैं। अनुस्वार अनुनासिक के ये संवाद अपनी आंतरिक लय में मौलिक और अर्थवत्ता से पूर्ण है। अगर उस आंतरिक लय का ध्यान न दिया जाए तो यह नितांत सपाट भी लगेंगे और इनकी अर्थवत्ता भी समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से राकेश की संवाद योजना कहीं भी सतही, अस्वाभाविक या भाषा जाल प्रतीत नहीं होती। इतने बड़े नाटक में एक भी पंक्ति शून्य, जड़ या अपाठ्य नहीं कही जा सकती, इसीलिए इन संवादों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्हें नाटकीय संरचना का अभिन्न अंग मानकर और रंगमंचीय यथार्थ की सृष्टि मानकर अनुभव करना होगा, क्योंकि इनमें अलग से कुछ भी कहा, समझाया या विश्लेषित नहीं किया गया है। इन्हें गहन अनुभूति और रंग दृष्टि से रचा गया है। आषाढ़ का एक दिन में, और चाहे कोई भी कमजोरी हो, लेकिन उसके संवाद अपनी नवीनता, विविधता और विशिष्टता में अप्रतिम है। राकेश की नाट्य भाषा इसमें बड़ी सहायक हुई है, क्योंकि अंततः भाषा का रचाव ही संवाद के रचाव का अनिवार्य हिस्सा है। भाषा के संबंध में, नाट्य भाषा के संबंध में राकेश ने नए सिरे से सोचा है, और पहली बार साहित्यिक हिंदी को सार्थक नाट्य भाषा का रूप इस नाटक में दिया। जैसा कि नेमीचंद्र जैन कहते हैं कि उसमें शब्दों की अपूर्व मितव्ययिता भी है, और भाषा में ऐसा नाटकीय काव्य है जो हिंदी नाटकीय गद्य के लिए एकदम अभूतपूर्व है, और अचानक ही हिंदी नाटक का वयस्क होना सूचित करता है। संदर्भ एक, देखिए अध्याय मोहन राकेश की नाट्य भाषा। पृष्ठ संख्या 60। बिंब प्रयोग इस नाटक को और प्रभावशाली बनाते हैं। वर्षा इस नाटक का, इसके वातावरण का, भावाभिव्यक्ति का अभिन्न अंग है। राकेश ने आत्मकथा में लिखा भी है कि मुझे वर्षा बहुत प्रिय है, और मैं किसी वर्षा के दिन से ही अपने जीवन की कहानी आरंभ करना चाहता हूँ। कालिदास और मल्लिका वर्षा से ही बंधे हुए हैं। बहुत दिनों बाद वर्षा में भीग कर कालिदास अपने तन मन की थकान मिटने का सुख पाता है। वर्षा का संबंध दोनों के अंतर्मन से भावना से, भावना के द्वंद से है। अंबिका का छाज में धान फटकना, धान निकालना, रखना, दूध बनाना, देना, सब उस कर्म का संकेत है जो उसकी दृष्टि है। तो हरिण शावक उस कवि सुलभ कोमलता, मानवीय संवेदना को, संवेदनशील हृदय को व्यक्त करता है जो कालिदास में है, राजपुरुष में नहीं है। प्रथम अंक में विलोम के आने के साथ अंधकार बादलों का ही नहीं है, अंबिका के मन का भी, उन परिस्थितियों का भी है जिनमें पात्र घिरे हुए हैं। अग्निकांड का प्रकाश जहाँ नाटकीय प्रभाव पैदा करता है, वहाँ विलोम की सायास चेष्टा को भी व्यक्त करता है। प्रथम अंक के बाद द्वितीय अंक और तृतीय अंक के वर्षों के अंतराल को बड़ी स्वाभाविकता, रोचक तीव्रता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रकोष्ठ की बदली हुई स्थिति, कम बर्तन, कुंभों पर जमी काई, रस्सी पर टंगे वस्त्र, टूटा मोढ़ा आदि सब मल्लिका और उसके परिवेश का संकेत करते हैं। प्रथम अंक में दीपक अगर दो हैं, तो अंतिम अंक में केवल एक, जो अंबिका की मृत्यु और परिस्थितियों से जन्मे मल्लिका के एकाकीपन और विवशता का ही सूचक नहीं है, उसकी अकेली जलन का, आत्मदाह का भी सूचक है। मल्लिका की परिणति उसके लंबे काल में है। कालिदास भी प्रवेश करते ही उसके विघटनकारी रूप का अनुभव करता है। वह भी अपने को अंदर से, अपने परिवेश से टूटा हुआ महसूस करने लगता है। रेशमी वस्त्र में लिपटा रखा भोजपत्र मल्लिका की भावना का प्रतीक है। तो मैले कपड़ों के नीचे दबा रखा ग्रंथ और उस पर पड़ी धूल उसकी विवशता और भावना, उसकी अपनी परिणति का भी। घोड़ों की टापों के निरंतर निकट आने और दूर जाने के स्वर से मल्लिका का सारा अंतर्द्वंद, विलोम और अंबिका की सारी क्रियात्मकता और जड़ता को व्यक्त ही नहीं किया गया, नाटकीय संघर्ष को तीव्र प्रभाव भी दिया गया है। नाटक इस तरह के नाटकीय प्रभाव संकेतों, दृश्य और श्रव्य बिंबों से भरा पड़ा है, जो नाटकीय युक्तियों के रूप में नहीं, नाटक की अनिवार्य मांग और भाग के रूप में आए हैं। संदर्भ एक, नटरंग 21, मोहन राकेश के नाटक, पृष्ठ संख्या 35 से 36। दो, सारिका मार्च 73, आत्मकथा पृष्ठ संख्या 74। पृष्ठ संख्या 61। और जो तीव्र भावोद्दीपन ही नहीं करते भाषा का, बल्कि उससे भी कहीं अधिक सार्थक कार्य करते हैं, ये बिंब प्रयोग डेकोरेशन के रूप में नहीं, अनिवार्यता के अर्थ में आए हैं, अभिव्यक्ति का एक सही माध्यम बनकर। इसीलिए यह नाटक अपने मंचन में हमेशा एक नई चुनौती बनकर आता रहा है और एक माने में नाट्य प्रशिक्षण का काम करता रहा है, क्योंकि इस नाटक में अभिनय पद्धति या अभिनय शैली इसी के अंदर से खोजी जा सकती है और नए से नए प्रयोग किए जा सकते हैं, जो लोग इस नाटक को सतही विलाप से आगे की चीज नहीं मानते, वह कालिदास की चारित्रिक दुर्बलता और सतहीपन का संकेत करते हैं। कालिदास के इस दुर्बल पक्ष से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि उसके द्वारा राज्य के साथ कलाकार के संबंध की समकालीन अनुभूति का विश्लेषण पूरी सच्चाई के साथ पेश नहीं किया गया। लेकिन यह कहना कि चरित्र चित्रण, नाटकीय भाषा, संगठन और नाटकीय अनुभव के लिहाज से इनमें कोई नई या ताजा या मौलिक बात नहीं है, यह भी पूर्वाग्रह ही है। यह नहीं भुलाना चाहिए कि राकेश ने एकदम क्रांति नहीं पैदा की है, लेकिन हिंदी में नाट्य विधा जिस स्थिति में थी, उसे एक ही नाटक से इतनी समर्थ, सशक्त विधा बना देना उन्हीं का काम है। हिंदी नाटक के परिप्रेक्ष्य में आषाढ़ का एक दिन और उसके रचनाकार के महत्व को देखना जरूरी होगा। इस एक नाटक से हिंदी में सब तरफ जो नाट्य दृष्टि बढ़ती है और हिंदी नाटक के संबंध में जो दृष्टि परिवर्तन हुआ है वह जानी हुई बात है, और यही मुझे नवीनता और मौलिकता के संबंध में राकेश के विचार याद आ जाते हैं। उनका कहना है कि नई स्थितियों में जीवन की प्रतिक्रियाओं का चित्रण नवीनता का एक क्षेत्र है। मौलिकता का संबंध उतना अनुभूति से नहीं जितना अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति से ही लेखक के अपने व्यक्तित्व की छाप आ जाती है, वह छाप रचना से ताजगी ले आती है। नवीनता और मौलिकता राकेश के व्यक्तित्व की छाप इस नाटक में देखी जा सकती है। यह नवीनता और अधिक सार्थक होती अगर कालिदास को समकालीन अनुभव और तीव्र संघर्ष से जोड़ने में राकेश उतने ही सफल हुए होते जितने कि अन्य पात्रों के चित्रण में और मर्यादित अभिव्यक्ति में हुए हैं।